हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। कार्तिक मास में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बुनाके में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारण। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदांत सूत्र का सार है। व्यास देव जिसने कलयुग के लोगों के लिए वेदों को एक वेद को चार वेदों में विभाजित किया, एक साम यजुर अथुर्वेद और फिर उपनिषद और पुराण लिखे 17, महाभारत लिखी जिसके अंतर्गत भगवद गीता है, फिर भी असंतुष्ट था। बद्रिका आश्रम में सरस्वती के तट के ऊपर व्यासदेव असंतुष्ट है सारे वेद को रचने के बाद। जब आदमी समझता है कि मेरे पास कुछ कम है तो भगवान की कृपा से उसको देने वाला कोई आता है। जब समझता है मेरे पास सब कुछ है तो फिर क्यों कोई आएगा। जैसे ही व्यासदेव ने सोचा कि कुछ कमी रह गई है तो एकदम नारद देव ऋषि वहां पधारे जो व्यासदेव के गुरु भी हैं, और आते ही उनका स्वागत किया, आसन दिया, जलपान कराया, फिर हाथ जोड़ के व्यासदेव ने कहा कि आप जरा गुरु जी हवा की तरह सब जगह जा सकते हैं, प्रकाश की तरह हर स्थान पे पहुंच सकते हैं, आप मेरे हृदय में देखो कि क्या चीज कमी रह गई है। नारद जी ने कहा कि आपने वेदों का वर्णन तो किया है, उसमें एक तो कर्मकांड को इतना भरा है कि लोग स्वर्ग में जाने के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग उनको मिलेगा नहीं। प्रायः तो सब लोग केवल पूजा पाठ करते हैं स्वर्ग लोग ज्यादा से ज्यादा जाने के लिए, पहले तो इस संसार में सुख के लिए करते हैं। कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ये देवता क्षिप्रम भवति कर्मजा। जो कम बुद्धि वाले हैं संसार में सुख चाहते हैं और देवता की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? संसार का सुख चाहिए, कब तक रहेगा? अंतवंत में देह, जैसे शरीर समाप्त होगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अंत वो फल भी समाप्त हो जाएगा, फायदा क्या उसका। और फिर नारद जी कहते हैं और फिर आपने निराकार ब्रह्म का इतना वर्णन किया है और पशु बलि का इतना वर्णन किया है कि हम आने वाले समय में हम कहेंगे कि वैष्णव बनो और भगवान का उपासना करो तो लोग मानेंगे नहीं। अब आप ध्यान में जाकर समाधि लगाओ व्यासदेव, आप ध्यान में समाधि में बैठो और भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। व्यासदेव समाधि में बैठा और ये श्रीमद् भागवत उसके हृदय के अंदर प्रकाशित होने लगी। और व्यासदेव भागवत को जैसे ही रचना की बड़े संतुष्ट हो गए। अब सिखाएं किसको? इतना बड़ा महान ग्रंथ जिसमें भगवान की लीलाएं, जिनको सुनने से लोग संसार को भूल जाते हैं। लीला का अर्थ ये होता है, लीला का अर्थ है कि संसार आपके लिए लय हो जाए, समाप्त हो जाए और मन भगवान में तलीन हो जाए। लीला के दो काम है, संसार भूल जाए और मन भगवान में लग जाए, उसको लीला कहते हैं। लीला संसार छुड़ा के भगवान में मन लगाने के लिए होती है। तो व्यास देव ने इस महान ग्रंथ को किसी को शिक्षा के रूप में देने का संकल्प किया और घर में सुखदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का भगवान की कृपा से संयोग बना। लेकिन शास्त्र में यह वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं था। व्यासदेव ने कहा, बेटा आप आ जाइए। बोला, बाहर माया है। बोला, आपको माया नहीं छुएगी। बोला, माया आपकी है क्या? व्यासदेव कहते हैं, नहीं। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के लिए इस धरती के ऊपर प्रकट हो चुके थे। व्यासदेव जाके श्री कृष्ण को लेकर आए। श्री कृष्ण ने सुखदेव को कहा, आप बेटा आ जाओ बाहर। बोला, माया? बोला, माया मेरी है। माया अधीक्षण है प्रकृति सूयते से चराचरम। मेरी अध्यक्षता में माया काम करती है, आपको नहीं छुएगी, आ जा बेटा। सुखदेव प्रकट हुआ और प्रकट होते ही कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं और चल दिया वन में। व्यास देव ने कहा, मैं पुत्र इसलिए प्राप्त किया कि मैं भागवत सिखाऊंगा, और ये तो घर छोड़ के चला गया। कैसा है सुखदेव? ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म आनंद में रहता है, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। सुखदेव उस ऊंची कोटि का महात्मा है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है। जा रहा है आगे सुखदेव, पीछे व्यासदेव कह रहे हैं, बेटा रुकिए, बेटा रुकिए, नहीं सुन रहा है। रास्ते में एक पानी का तालाब पड़ा, स्त्रियां नहा रही थी। सुखदेव कुछ वस्त्र नहीं पहना हुआ था, वहां से गुजरा। किसी स्त्री ने अब कपड़ा भी नहीं ढका, उसकी चिंता भी नहीं की। व्यासदेव जैसे गुजरा, सब स्त्रियों ने कपड़ा शरीर के ऊपर ढक लिया। व्यासदेव को बड़ा आश्चर्य लगा, मेरा लड़का नौजवान 16 साल का और नगन अवस्था में जा रहा है, उसको देखकर को इनको लजा आई नहीं? मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं जो इनके पिता के समान हूं, ऐसे क्यों कर रही है? तो पूछा कि बेटी आपने ऐसे क्यों किया? बोला, ये जो सुखदेव जा रहा है, इसको स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है इसका भी पता नहीं। ये पेड़ को, पत्थर को, पहाड़ को, स्त्री को, पुरुष को, सबको समान समझता है। इस स्तर का ये महात्मा है। अब व्यासदेव ने क्या किया? पायल, जैमिनी आदि जो उसके शिष्य थे, उनको भागवत के कुछ श्लोक सिखाए। एक भागवत का श्लोक सिखाया तीसरे स्कंद से, जो उद्धव बोलता है विदुर को कि पूतना स्तन के ऊपर विष लगाकर कृष्ण को जहर देके मारने के लिए आई, लेकिन क्योंकि उसने अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया तो गोपाल ने उसको भी धात्री गति दे दी, मां का स्थान दे दिया। इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है? जो मारने आया उसको भी मां का स्थान दे दिया, इससे बड़ा दयालु कौन संसार में हो सकता है? सुखदेव ब्रह्म आनंद को छोड़ के भागे उनके पीछे। बोला, रुको, तो क्या कहा? बोला, ये श्लोक। बोला, कहां से सीखा? बोला, हमारे गुरु जी ने। फिर सुखदेव वापस ब्रह्मानंद बैठ गए, ब्रह्मानंद में समाधि लगा के। दो चार दिन के बाद फिर शिष्य घूमते हुए श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद से वेणु गीत से एक श्लोक गाने लगे। ब्रहा पीड़म नटवर वपु। भगवान श्री कृष्ण जब वन में प्रवेश करते हैं, आगे आगे गैया जाती हैं, पीछे ग्वाल वाल होते हैं, और श्री कृष्ण नट का वेश, नृत्य का वेश धारण किया हुआ है और मोर का पंख लगा हुआ है, वैजंती माला पहनी हुई है, बांसुरी हाथ में। ये माधुर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन सुनके सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद को छोड़कर उनके पीछे भागे और उनके साथ उनके गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी को देखा, ये तो पिता, और तब पिता के पास बैठकर भागवत का अध्ययन किया। तो भागवत सुखदेव जैसे वृक्त महात्मा ब्रह्म आनंद में पहले पहुंचे हुए हैं, सब योग अभ्यास कर चुके हैं, उन सबको नीचे फेंक के छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रस आस्वादन करते। एक बहुत बड़े शंकराचार्य के अनुयायी अद्वैत सिद्धि के शिखर के ऊपर विराजमान महात्मा हुए हैं। बनारस में रहते थे और श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन सुना तो ब्रज में आके गली गली में घूम के कृष्ण को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, उनकी गीता के ऊपर टीका है, भागवत। वो बहुत बड़े विद्वान अपने समय के हुए हैं कि मैं अद्वैत सिद्धि के शिखर के ऊपर था लेकिन इस गोपियों के लंपट ने मुझे वहां से घसीट के वृंदावन की धूल के अंदर गिरा दिया। अब मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं जानता हूं, कृष्ण तत्व न जानामि, कृष्ण के अलावा और कोई तत्व मैं जानता ही नहीं हूं। आज भी वृंदावन में हजारों ऐसे महात्मा हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए बड़े उपासक शंकर के रहे, बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन तुलसी के सामने बैठकर गोविंद गोपाल गाते रहते हैं। इसलिए भगवद गीता का ये श्लोक, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमिति समात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ये कई जन्मों का ज्ञान जब इकट्ठा होता है तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो दामोदर अष्टक है ये भगवान की भक्ति का रसमय लीला है और भगवान की प्राप्ति का साधन भक्त है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले भक्त का दर्शन करा रहे हैं और यशोदा माँ भक्त है। यशोदा माँ ऐसी भक्त है भगवान की, उसका पहले दर्शन करा रहे हैं। भक्त मिलेगा तो भगवान मिलेगा, भक्त नहीं मिलेगा तो कभी भगवान नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल साफ समझ लो जीवन में कि भक्त के संग के बगैर भगवान मिलना संभव नहीं है। और ऐसे भक्तों ने लिखा है, हो सकता है तुम्हें ब्रह्म में तुम लीन हो जाओ, हो सकता है तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, तुम्हारे को वो मुबारक है, तुम उसमें सुखी रहो, लेकिन हम तो इस यशोदा नंदन गोपाल की लीलाओं में आनंद लेते हैं और हमारा जीवन यही लीला कहना और ये लीला सुनना है। ऐसे बहुत से महात्माओं ने लिखा है। मां यशोदा के बालू में जो मालती के फूल हैं, श्रीपाद वल्लभ आचार्य सुबोधनी में लिखते हैं टीका में भागवत की कि ये फूल ब्रह्म विद्या है जो सर के ऊपर होती है, लेकिन जैसे ही मां के हृदय में कृष्ण बाल के लिए प्रेम आया वो फूल नीचे गिरे कि अब हमारा स्थान यहां नहीं रह गया, ये तो प्रेम की जगह है जहां वहां ब्रह्म विद्या नीचे हो जाती है अपने आप। कृष्ण प्रेम के सामने ब्रह्म विद्या बहुत नीचे गिर जाती है। तो ये बहुत बड़े भागवत के टीकाकार श्रीपाद वल्लभ आचार्य, जो संप्रदाय उनका अपना पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उसमें ये शब्द उन्होंने लिखे हैं। मां भक्त है, भगवान की सेवा कर रही है, भगवान के लिए माखन निकाल रही है, भगवान के गुण गा रही है, भगवान का चिंतन कर रही है। ये भक्ति का सूत्र है, मत कर्म कर्ण। भागवत श्री भगवत गीता के 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, मत कर्म कर्ण, काम मेरे लिए करो। आप सब लोग बैठे हो, किसके लिए काम करते हो जरा विचार करो। घर के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हो ना, लेकिन भगवत गीता कहती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम मेरे लिए करो। खेत में काम करते हो तो फूल मेरे लिए उगाओ, अगर घास उगाते हो मेरी गैया के लिए उगाओ, अनाज पैदा करते हो तो मेरे को भोग लगाने के लिए करो, मत कर्म कर्ण। मत परमो, मेरे को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझो। गोल जीवन का क्या होना चाहिए? मेरे को प्राप्त करना, मत सर्वस्व, मैं ही सब कुछ हूं। शरीर से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे प्राप्त करना आपका लक्ष्य मान लो। मद भक्त और दिल से मुझसे प्रेम करने वाले भक्त बनो। हम काम किसके लिए करते हैं? जिसके लिए काम करते हैं उससे प्रेम थोड़ी करते हैं। काम तो करते हैं सेठ के लिए और प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। ऐसा ऐसा भगवान को बात भक्त पसंद नहीं है कि काम भगवान के लिए करे और प्रेम किसी और से करे और जीवन का लक्ष्य किसी और को माने। हम क्या करते हैं? काम एक के लिए करते हैं, जीवन का लक्ष्य दूसरा है, प्रेम तीसरे से करते हैं। प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, काम करते हैं सरकार के लिए और जीवन का लक्ष्य मानते हैं कुछ और। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक भक्ति का सूत्र है। तो मां यशोदा इस सूत्र के अंतर्गत माखन भी कृष्ण को अर्पण करने के लिए बना रही है। कैसे बैठी है? पूजा के लिए बैठी है। जैसे रेशमी साड़ी क्यों पहनी है? रेशमी कपड़े को कोई चीज लग भी जाए तो उसमें पाप नहीं होता, अपराध नहीं होता। पूजा के लिए रेशमी कपड़ा पहना जाता है। क्षोभम वास, और क्षोम किसको कहते हैं? अलसी का पुष्प। ये जो रेशम है कीड़े का रेशम नहीं है जिसको मार के बनाया है, ये तो अलसी के पुष्प के अंदर से निकला हुआ रेशम है। और अलसी का पुष्प कैसा होता है? कृष्ण का रंग अलसी के पुष्प जैसा है। अलसी सुमन, जैसे अलसी का फूल है ऐसा कृष्ण का रंग है। मां ने उसी रंग के फूल से रेशम को प्राप्त किया है। कीड़े वाला रेशम नहीं है, रेशम कीड़ा बनाता है और लोग कीड़े को गर्म पानी में डाल के उसमें से रेशम निकाल लेते हैं। ये हिंसा का रेशम है। लेकिन मां ने जो रेशम पहना है वो पूजा के लिए पहना है। कृष्ण की सेवा कर रही है, माखन निकाल रही है, पूजा कर रही है। और कितनी तलीन है पूजा में, 80 साल की आयु है फिर भी शरीर बहुत रुष्ट पुष्ट है। बाल असली काले हैं और बालों से पसीना बह रहा है जैसे काले बादलों से बरसात हो रही है। तो भगवान के लिए सेवा करते हुए शरीर को भूल जाना चाहिए। भक्त अपना अनुभव बता रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा पहली बार या दूसरी बार पाश्चात्य देश में हो रही थी। पहली जो ठाकुर जी की पूजा इस्कान में हुई है वो जगन्नाथ की हुई है। पहले जगन्नाथ की ही पूजा हुई और जगन्नाथ भी कैसे इस्कान में आ गया? किसी दुकान के ऊपर एक भक्तन गई और उसने ऐसी कोई 3 इंच के साइज के और 6 इंच साइज की मूर्तियां पड़ी थी, एक मूर्ति वहां से उठा ली दुकान से। और उसको जैसे प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने उसको प्रणाम किया, बोला ये कहां से लाई, ऐसे और भी होनी चाहिए। बोला हाँ और भी है। बोला इसकी एक बहन होगी, एक दूसरा इसके वो लेके आओ। वो गई उसी दुकान से, कैसे लेके आई वो मालती से पूछना जो स्वयं लाई थी। प्रभुपाद ने देखा तब कहा इसकी बड़ी मूर्तियां बनाओ। और पहली बार ये जगन्नाथ जी के ठाकुर जी इस्कान में पूजित हुए। रथ के ऊपर जगन्नाथ जी बैठे हैं, प्रभुपाद सिल्क के कपड़े पहने हुए जैसे वहां आए, दंडवत प्रणाम किया। भक्त कहते हैं हमें आश्चर्य लगा, हम सोच रहे थे ये तो कहीं गंध है कचरा है, गली के अंदर कैसे प्रणाम करेंगे, रोड के ऊपर खड़े हैं। तो शरीर को भूलना चाहिए जब भगवान याद आए तो। मां जब भगवान के लिए दही मंथन कर रही है तो शरीर उनको याद नहीं है, पसीना हो रहा है तो परवाह नहीं, फूल गिर रहे हैं तो परवाह नहीं। मां बड़े प्रेम के साथ कन्हैया के लिए मखन वो गा क्यों रही है कि हृदय में जो प्रेम है वो इस गीत के रूप से इस दही में जाएगा और मक्खन प्रेममय बन जाएगा अपने प्रेम को। और जब गा जब रही है, मां गा रही है और मंथनी तो नाच रही है, मंथनी नाच रही है तो फिर चूड़ियां भी बजने लगी और कानों के कुंडल भी स्वर के साथ चलने लगे। गाना भक्ति का, भक्ति की उत्पत्ति का साधन है। इसलिए इस गान की शुरुआत में प्रभुपाद जी ने एक ही कहा था, कीर्तन। और कीर्तन में भी मृदंग और खड़ताल, और ये जब कीर्तन करते हैं तो हृदय के अंदर आनंद ऐसे उभर के बाहर आता है। और थोड़े दिन से मैं पढ़ रहा हूं कि पहले दिनों में भक्त 8 घंटे रोज जाके रोड के ऊपर कीर्तन करते थे, 8 आवर्स कंटिन्यूअसली, 6 to 8 आवर्स। कितने 5-6 भक्त खड़े होकर कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन के माध्यम से प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि हमारे ये संस्था पूरे विश्व के अंदर हमने स्थापित किए केवल कीर्तन और प्रसाद से। बहुत प्रेम से कीर्तन किया और प्रसाद का वितरण किया और लोगों का हृदय बदल गया। भगवान का नाम हृदय पवित्र करता है, प्रसाद हृदय पवित्र करता है। जब हृदय पवित्र होता है तब भगवान की कथा हृदय के अंदर जा सकती। प्रभुपाद ने कथा बाद में बताई और कीर्तन पहले किया, प्रसाद पहले खिलाया। तो माँ आज माँ भगवान के लिए माखन बना रही है, माखन तैयार होने में देर है। माँ बड़ी परिश्रम के साथ सुबह सवेले मंथन कर रही है और भगवान श्री कृष्ण को माँ के दूध पीने की इच्छा हुई, उठ के आए, माँ की मंथनी को पकड़ लिया, माँ के गोद में चढ़ गए, माँ ने प्रेम से दूध पिलाया। बच्चा और माँ दोनों आनंद में है, माँ भी मुस्कुरा रही है स्नेह के कारण और बच्चा दूध के, माँ के दूध के प्रेम के कारण मुस्कुरा रहा है। माँ ने चढ़े हुए दूध को देखा जो उफन रहा था, नीचे गिर रहा था आग में। माँ बच्चे को नीचे छोड़ के आग से दूध को बचाने के लिए गई। इसके ऊपर भी हमारे आचार्यों ने लिखा है कि यशोदा ने दूध बचाने के लिए गई, कृष्ण को नीचे छोड़ दिया। ये भी तदीय वस्तु, कृष्ण के लिए दूध था, उसकी रक्षा करनी थी। तो इसमें कोई यशोदा की गलती नहीं है। यशोदा तो कृष्ण के लिए जो दूध गिर रहा था उसको बचाने के लिए, एक भक्त को भगवान की सेवा में लगाने के लिए गई। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कहते हैं कि आप आरती भी करते हो और कोई मंदिर में मेहमान आ जाए, भगवान की पूजा को रोक के मेहमान आता है उसका पहले स्वागत करना चाहिए और भगवान की भक्ति के बारे में उसको 2 शब्द कहने चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर के लिए यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया लेकिन एक भक्त को भगवान की सेवा में लगा दिया। दूध भगवान के लिए बन रहा था, उसको भगवान को अर्पण करना था कृष्ण को, तो कृष्ण की सेवा में लगाने, तो भक्त को भगवान की सेवा में लगाने के लिए भगवान को मां ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ये तो मेरा अपना है। जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को, इसका एक उदाहरण ऐसे देते हैं। आपके घर में कोई, आप 5 घर वाले घर में रहने वाले हो, आपने अपना भोजन बनाया, 2 मेहमान आ गए, तो कौन भूखा रहेगा, मेहमान या आप? हाँ, कौन भूखा रहेगा? घर वाला खुद भूखा रहेगा, मेहमान को भूखा तो नहीं रखेगा ना। क्यों? कष्ट किसको देते हैं? अपने को, दूसरे को नहीं। तो दूसरे को भक्ति में लगाने के लिए अपने को कष्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो कृष्ण प्रेम तो ब्रजवासियों से कर रहे थे लेकिन रह रहे थे द्वारका में, तो प्रेम किससे ज्यादा था, द्वारका वासियों से कि वृंदावन वासियों से? वृंदावन वासियों से। भूखा अपनों को रखा जाता है और खिलाया दूसरों को जाता है, वो भी प्रेमी है लेकिन अपने कौन है? तो यहां मां कृष्ण को तो नीचे रख दिया लेकिन दूध को उतारा, क्योंकि दूध को भगवान की सेवा में लगाना था। तदीय वस्तु जो है, ये भगवान शंकर जब कहते हैं पार्वती को, तो आराधनाम विष्णु आराधनम परम, सारी पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा उत्तम है, और फिर कहते हैं उससे भी उत्तम पूजा है तदीय वस्तु की, जो उसके भक्त हैं उनकी पूजा उससे भी उत्तम है। तो भगवान के भक्त की पूजा अथवा भगवान के भक्त की सेवा सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम है। ये महत्वपूर्ण माता जी की शिक्षा है। और मां कृष्ण को छोड़ के गई और कृष्ण चुप करके बैठ जाता तो प्रेम तो नहीं है मां से। अब कृष्ण छोटे से बाल कृष्ण 3 साल के, यहां शब्द लिखा है मिश्रा अश्रु जूठे आंसू आंखों में आए, जूठे आंसू आंखों में, और क्रोध आया संजात कोप, क्रोध आया आंखों में झूठे आंसू आए और पत्थर उठा के और मटका फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद वहां से भाग के दूसरे कमरे में चले गए और वहां जो टांगा हुआ माखन था उखल के ऊपर चढ़ के उसको उतारा और बंदरों को बांटने लगे। मां वापस लौटी दूध को उतार कर, दूध गर्म दूध उफन रहा था, मां ने उसको उतारा, आग थोड़ा कम कर दिया, पानी ऊपर डाल दिया, दूध अपने स्थान पे आ गया। मां वापस लौट के आई तो दही का मटका टूटा हुआ मिला। मां को हंसी आ गई, बोला ये बच्चा हमारा बहुत नाटी हो गया, शरारती हो गया। बच्चे अपने घर की रक्षा करते हैं, ये घर का सामान ही तोड़ रहा है, इतना गुस्सा इसको आ गया, थोड़ी देर छोड़ के चली गई। और मां को एकदम भय लगा कि कहीं भाग न जाए। अब भय के मारे, अब तो बर्तन तोड़ के गया है ना तो डर लगेगा, सुबह सुबह कहीं चला गया तो फिर खाएगा कहां से, उसको कुछ खिलाया नहीं है, भूखा है, तो कहां चला गया, वहां तो दिखता नहीं है। मां वापस आई, मटके को टूटा हुआ देखा, मुस्कुरा लिया, बच्चे में मैं स्वसुत्तम सर, अपने बेटे का काम है, स्वसुत्तम कर्म अपने बेटे का काम है, लेकिन उधर दिखता नहीं है बेटा, कहां चला गया। तो मां को चिंता यह हुई कि कहीं डर के मारे चला ना जाए, छोटा बालक है, कभी कभी ऐसे बच्चे घर में कोई गलत काम उनसे हो जाता है तो भाग जाते हैं बाहर, हाँ यहां तो गने में छुप जाते हैं, बहुत दूर जाके तो उनको मिलना मुश्किल होता है, भाग जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इसलिए मां को बड़ा चिंता होने लगी, ये तो स्नेह था मां का। तो मां क्या देखती है, मां देखती है कि सामने दूसरे कमरे में कुछ कौए उड़ रहे हैं। अरे कौए क्यों उड़ रहे हैं, बंदर खड़े हैं। अरे बंदर कमरे में कैसे आ गए। और तब नीचे देखा तो दही के ऊपर जो मटका फट गया था, फूटा था, उसके ऊपर कृष्ण के चरणों के निशान है, छोटे बाल के निशान देखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो कहते हैं अभी 3 साल के हो गए थे ना, तो भगवान के चरणों के अंदर जो विशेष अंक है वो सब दिख रहे थे, अंकुश आदि जो कुछ है, पुष्प कमल आदि वो सब दिख रहे थे। मां चरण देखे बच्चे के, हाँ इधर ये कहीं गया नहीं है, लगता है उस कमरे में। तो मां पीछे से छुपके ऐसे कमरे में देखने लगी, क्योंकि भाग न जाए ये मां को डर था। वो ये देखती है तो क्या दिखता है, उल खोलो अंगरे ऊपरी विवस्थितम, उल्टा उखल करके उसके ऊपर बैठा हुआ है, बैठ गया। हरीश्वरी जी एक श्रीमद भागवत के 10वें स्कंद के ऊपर बड़ी सुंदर रसमय कविता लिखी है, उसने लिखा है जो घर से मां से नाराज होकर जाएगा ना वो बदमाशों के संग में जाएगा। तो खल का मतलब क्या है, उखल, खल मतलब बदमाश, आपको माना खल किसको कहते हैं, हाँ खल नायक, हाँ ये सबको याद आया नाम, तो खल किसको कहते हैं, बदमाश को। मां ने देखा ये तो बदमाश के संग में बैठा है, जो भी घर से रूठ के जाएगा वो बदमाश के चक्कर में पड़ेगा निश्चित रूप से। तो उखल के ऊपर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है उखल के ऊपर बैठा हुआ, मरकाय कामम ददतम सिचिस्तम, बैठा हुआ बंदरों को चुरा के माखन खिला रहा है। अच्छा चौर्य अयंगम चौर्य, वो माखन चुरा के खिला रहा है, लेकिन जब खिला रहा है तो क्या कर रहा है, विशंकिते ईक्षणम, इधर उधर देख रहा है कहीं मां तो नहीं आ रही, ऐसे मानो बंदर को माखन दिया, ऐसे पीछे देखा मां तो नहीं आ रही है। तो ऐसे बहुत सतर्क है, बहुत मां आएगी जरूर मुझे, मैं काम गलत करके आया हूं तो कहां, और ऐसे क्यों ये माखन क्यों खा रहा है और बांट रहा है। बोला थोड़ा दूध बचाने गई थी ना, आप देखो कितना बड़ा नुकसान करके दिखाता हूं, थोड़े दूध की वजह से मेरे को छोड़ के गई ना, आप देखो पता लगेगा कि कितना नुकसान करता हूं। और फिर मां ये मां को ये भी बताना है कि मैं भूखा था, आपने मेरे को दूध पूरा पिलाया नहीं, इसलिए देखो कल वाला पुराना मक्खन खाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं नहीं खाता हूं इसलिए बंदर को देता हूं, बंदर भी नहीं खाता है। देखो आप अब मां ने क्या किया, मां ने ईक्षतम निरीक्षय, मां ने देख लिया और फिर देखने के बाद पश्चात निरीक्षय पश्चात सुतम, अपने बेटे को देखा, उखल के ऊपर बैठे हुआ देखा, बंदरों को मक्खन बांटते हुए देखा और भयभीत चारों ओर से ऐसे देखते हुए देखा। तो मां ने क्या किया, वहां पहुंच आस्ते आस्ते वहां पहुंचने का, बहुत आवाज ना हो पांव का कि देखिए ना मैं जाके इधर बैठे बैठे को पकड़ लू, आगवश नहीं, आस्ते बहुत पांव दबे पांव जाने लगी मां। लेकिन मां दबे पांव जाने लगी तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने तो देख लिया टेढ़ी आंख से देख लिया और देखा कि मां के हाथ में तो लाठी है, लाठी है। एक बार रावण आया था किष्कंधा में, पूछा बाली कहां है, मैंने सुना है बहुत बड़ा वीर है, उसके साथ युद्ध करना है। किसके बाली सुबह सुबह समुद्र की पूजा करने जाता है, समुद्र की पूजा पे गए हैं, आएगा तब बात करना नहीं, मैं उधर ही मिलूंगा। तो बाली को देखा समुद्र पे तट के ऊपर बाली पूजा कर रहा है, तो रावण पीछे दबे पांव गया कि इसी बाली को ऐसे बैठे बैठे को पकड़ लूंगा। बाली ने ऐसे टेढ़ी आंख से देखा पीछे रावण आ रहा है, अपने सीधे हाथ से तो पूजा कर रहा था, उल्टे हाथ से ऐसे रावण को पकड़ के ऐसे कांख में दबा दिया, रावण को कांख में दबा के वहां से बाली जंप मारा दूसरे समुद्र के ऊपर और तीसरे समुद्र के ऊपर, तीन समुद्रों की पूरी पूजा किया और किष्कंधा में आया तो ऐसे जैसे मच्छर को नल डालते हैं ऐसे रावण को नीचे फेंका। रावण ऊपर देखा नीचे देखा, बोला ये मेरे को उठा के तीन समुद्र तक गया, मैं कितना सावधानी से पीछे जा रहा था लेकिन इसने मेरे को पकड़ भी लिया, इससे युद्ध करना उचित नहीं है, तो बोला मेरा मित्र बन जाओ, तो उसने मैत्री कर ली। तो ये मां को पीछे से, मां ने समझा कि मैं दबे पांव जा रही है, तो वो कृष्ण जो उखल के बैठा था वो क्या मां के हृदय में भी तो बैठा था ना परमात्मा के रूप में, उसको मालूम नहीं है कि मां आ रही है, उसने तो वहां से जान लिया कि यहां आ रही है। तो क्या किया, तो जैसे देखा मां को आते हुए, ताम आत यष्टिम परस ईक्षया, जैसे ही मां को लाठी हाथ में उठाए हुए आते देखा, स्थवरस एकदम ततो आवरुय उखल से कूदा, एकदम उखल से कूदा और कूद कर क्या किया, भयभीत अपससार भय भीतवत, बड़ा भयभीत होके उखल से कूदा और भागने लगा। यह अपना पहला श्लोक दामोदर अष्टक का है, यशोदा भियूलू खलाद धाव मानम, यशोदा के भय से उखल के से कूद के भागा। अब ये आगे भाग रहा है कन्हैया और मां ने क्या किया ना, यहां सुखदेव गोस्वामी कुछ और लिख रहे हैं, बोला मां गोप्य गोपी अन्वधावन, उसके पीछे गोपी भागी, धावने का मतलब भागना दौड़ना, गोपी उसके पीछे भागी। और सुखदेव गोस्वामी को याद आया कि इस परम, ये तो परम ब्रह्म है, इसको तो योगी ध्यान में पकड़ने का प्रयास करते हैं, उनको हाथ नहीं आता, गोपी इसको पकड़ने का प्रयास कर रही। सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया कि गोपी, यहां गोपी नाम क्यों का लिख दिया, वहां तो यशोदा लिखा है, अब गोपी क्यों बोल रहे, और आगे भी गोपी ही बोलेंगे, गोपी का मतलब जो गोपनीय रखे, जो छुपा के रखे। किस चीज को छुपा के रखना है? कृष्ण की भगवता को छुपा के रखना है। कृष्ण का वैभव प्रकट होगा तो कंस तो है ना पास में, मथुरा में, उसको पता लग जाएगा, तो उसको छुपा के कैसे रखना है? चोरी का इल्जाम लगाती हैं गोपियां, कंस कहेगा जो माखन की चोरी करता है वो थोड़ी मेरे को मारेगा। तो गोपी का मतलब जो गोपनीय, जो कृष्ण को छुपा के रखे, उसके वैभव को छुपा के रखे और उसको छोटे से बालक की तरह ट्रीट करे ताकि कंस को पता न लगे कि ये वही है जो कंस को मारेगा। तो गोपी का मतलब जो चीज गोपनीय रखे, छुपा के रखे। तो यहां यशोदा गोपी है और गोपी भाग रही है कृष्ण के पीछे। यहां लिखता है जो कृष्ण के पीछे भागता है ना उसको तो कृष्ण मिल ही जाता है। भाग रही है तो जरूर पकड़ेगी, कृष्ण तो गोपी, तो गोपी कृष्ण के पीछे उखल भागने लगा, बदमाश खल वो भी कृष्ण के साथ जुड़ा तो दो पेड़ों का उद्धार कर दिया। बदमाश भी कैसा हो, भगवान के रास्ते में लग जाएगा तो अपना तो उद्धार करेगा लेकिन दूसरे का भी उद्धार करेगा। अच्छा तो क्या, बुरा भी आदमी। आपको तो मालूम है प्रभुपाद ने कौन से भक्तों को भक्ति दी थी शुरू शुरू में। दुनिया का कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो वो नहीं करते थे, लेकिन एक भक्त के पीछे चलना शुरू किया उन्होंने, वो महात्मा बन गए। केवल भक्त के पीछे चलने से, केवल भक्त की शिक्षा, भक्त के पीछे चलने का मतलब भक्त की शिक्षा के अनुसार चलना, वो सब लोग सब बुराइयां छोड़ दी। वो जमाना केवल नशे का था, लड़के लड़कियां साथ घूमते थे, विवाह क्या होता है उनका कोई मतलब नहीं, उनसे पानी तो पीना नहीं है, बाकी सब नशा करना है। ऐसे लोगों को केवल प्रभुपाद के पीछे अनुगमन करने से, उनके पीछे चलने से वो सब महात्मा बन गए एकदम। तो भगवान के पीछे भागना, मां ने भगवान के पीछे भागना शुरू किया और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न यमाप योगी नाम, अरे योगी जिसको पकड़ नहीं सकते हैं ध्यान में थोड़ी देर के लिए भी, उसको ये गोपी पकड़ने के लिए दौड़ रही है। देखो तो जिसको योगी नहीं पकड़ सकते हैं उसको ये गोपी पकड़ने के लिए जा रही है। क्षमम प्रवेशम तपस्य ऋतम मनः, अरे बड़ी तपस्या करते हैं वो योगी, बड़ी साधना करते हैं, बड़ा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं आता है भगवान, लेकिन ये गोपी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। अच्छा, आगे कृष्ण दौड़ रहा है, पीछे मैया दौड़ रही है। अब सुखदेव गोस्वामी मैया को देखते हैं कि मैया थक गई है, मैया से दौड़ा नहीं जा रहा, दौड़ने का प्रयास कर रही है। बच्चा कितना भी दौड़ सकता है लेकिन मैया को दौड़ने में दिक्कत हो रही है। अनवाच माना जननी भ्रक चल श्रोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा, मां थक गई। क्यों थक गई? बोलो, शरीर भारी था, बाडी शरीर भारी था उनका, वक्षस्थल बहुत भारी था, नितंब स्तन बहुत भारी था, कटी तटे। कटी तटे शब्द का अर्थ क्या है? तट किसको कहते हैं? नदी का तट होता है, नदी नीचे होती है, कटी मतलब वेस्ट और तटे उसका तट मतलब नदी नीचे होती है और उसका जो किनारा होता है ऊपर होता है। तो मां जी, मां की कमर तो बहुत पतली थी, सुमध्यमा, सु मतलब बहुत सुंदर, मध्यमा मतलब बीच का, ऐसा माता जी का कमर बहुत पतली थी लेकिन नीचे का भाग बड़ा अच्छा था। बोला इसका ये क्यों, इसका क्यों वर्णन करते? बोला कृष्ण को गोद में उठाती होगी ना, तो कहां कृष्ण टिकेगा, कहां बैठेगा? माता जी लोग बच्चा उठाते हैं ना ऐसे गोद में, कहां टिकता है? भारी बेटा, वो यहां जाके अटकता है, देखा है, इसी जगह अटकता है, कटी तटे, ये जो ये भाग है ना, इधर जाके बच्चा अपने आप अटक जाता है। अभी तो माता जी बच्चा उठाते हैं ऐसे ऐसे उठा के देखो, यहीं अटकेगा, फिर ऐसे ऐसे गले के ऊपर उसका हाथ रख दो, अपने आप बैठा रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि यहां कृष्ण के बैठने की जगह थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को दिख रही थी। वो मां यशोदा की इस स्थान को देखने का उनका उद्देश्य था कि कृष्ण यहां बैठते हैं मां की गोदी में,
उठा के बच्चों को चलते हैं, ऐसे ही यहां बिठाते हैं ना बच्चे को, हाँ कहां बिठाते हैं? ये बहुत जो उठाते हैं उनको मालूम है, 3 साल के बच्चे को उठाएगा तो यही अटकेगा, ऐसे उठाने से हाथ फट जाएगा। और फिर जवेना विसरंशित केश बंधन, और माता जी को इतनी थक गई कि जो यहां फूल थे बालों में बांधे हुए वो गिरने लगे। च्योत परशुनानुगति ही, माता आगे भाग रही है, फूल उनके पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ है ब्रह्म विद्या भगवान तक पहुंचने का प्रयास करे तो भी पीछे रह जाती है, भक्त आगे रह जाता है। भक्त जब भगवान के पीछे भाग रहा है तो ब्रह्म विद्या रास्ते में पीछे रह गई, उनका पीछे जाने का प्रयास कर रही है। और लेकिन फिर भी माता जी ने हिम्मत नहीं हारी, माता जी ने प्रयास किया और पीछे से जाके पकड़ लिया, पीछे से जाके पकड़ लिया कन्हैया को। प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोपया, प्रामृष्टम पकड़ लिया, बड़ा प्रयास करके पीछे से जाके पकड़ लिया। कहते हैं पीछे क्या होता है? अधर्म भगवान की पीठ में होता है, पीछे से ही भगवान दिखेगा, अधर्म दिखता है। सामने तो भगवान को देखना बहुत मुश्किल है, हमारे दृष्टि में पीछे से ही भगवान उनको हाथ आया, पीछे से भगवान जैसे कन्हैया को पीछे से पकड़ा। अब पकड़ा हुए कन्हैया को क्या कह रही है माता जी, ये अपना दूसरा श्लोक है। अब जब पकड़ा तो कन्हैया समझ गया कि मैं अपराधी हूं, कृतागसम तम, अपराधी हूं, मैंने गलत काम किया है, 2 काम गलत किए हैं, मटका फोड़ा है, माखन चुरा के बंदरों को बांटा है, 2 काम गलत किए, इसलिए क्या करना चाहिए अभी? परोरुद्धंतम, अच्छी तरह से रोने लगा जोर से, अब तो और कोई रास्ता नहीं, रोना है, परोरुद्धंतम, और आंखों को अक्षणी कशंतम अंजन मशणी स्व पाणिना, अपने दोनों आंखों को ऐसे मसलने लगा और जो काला काजल था वो निकल के गालों के ऊपर आने लगा। ये हमारा दूसरा श्लोक है, क्या है? रुदंतम युगमेन नेत्रम, दोनों, युगमेन का मतलब दोनों, युगल दोनों रोने लगा। फिर क्या है, रो रहा है तो क्या, पहले कभी कन्हैया को रोना आता था, एकदम मैया अपने आंचल से आंसू पोंछती थी, लेकिन आज मैया जो आंसू पोंछने वाली है वही लाठी हाथ में लेके खड़ी है। अभी क्या करना चाहिए, अपने अपने कराम भोजम युगमेन, अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल लेगा। इसके ऊपर भी हरिसूरी जी लिखते हैं, बोला क्यों आंसू मसल लेगा, बोला ये काजल कलंक है, इसको निकाल देता हूं, कलंक मेरे ऊपर लगाना, काजल को निकाल के बाहर कर देता हूं। बोला रो क्यों रहा था, यहां तो दिखता है भय से रो रहा था, लेकिन हरिसूरी जी कहते रो क्यों रहा था? कन्हैया कहता है शास्त्र लिखता है जिसको भगवान मिल जाए उसका काम क्रोध लो सब खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाता है, मैं मां को मिला हूं फिर भी इसको क्रोध आ रहा है, इसलिए भगवान को रोना आ गया कि मेरे होते हुए इसको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब मेरा प्रभाव कम हो गया क्या? किसी को भगवान मिल जाए फिर भी काम क्रोध रहेगा क्या? अरे मैं सामने खड़ा हूं, इसको मिल गया हूं फिर भी इसको क्रोध आ रहा है, इसलिए भगवान को रोना आया कि मुझे हो क्या गया, हाँ मेरी वजह से मां शांत नहीं हो पा रही है। तो अब कन्हैया रोने लगा और मां ने क्या किया, कन्हैया को रोते देखकर, और रोते हुए भी क्या कर रहा है, उदवीक्षमानम भय विवेक लक्ष्मणम, और फिर वहवल, वहवल का मतलब है वो जो उस श्लोक में आता है ना, मुहश्वास कंठ त्रिरेखा अंठ, हाँ अब तो सिर्फ हांसू नहीं, ऐसे करने लगा ताकि ग्रीवा ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन मां ने क्या किया, हस्ते ग्रहित हाथ पकड़ लिया, आज ऐसे कर रहा ना, एक हाथ को पकड़ लिया और फिर भिष्यंती अवग्रत और डांटने लगी, प्रभुपाद ने कहा माइल्डली चेस्टाइजिंग, पकड़ कहने लगी मटकी फोड़ता है, मखन चुरा के बंदर को खिलाता है, जगता लाठी मारूंगी, नहीं करूंगा मां नहीं करूंगा, ऐसा एक भाव है। और जीव गोस्वामी लिखते हैं कन्हैया बोलते हैं मैंने नहीं तोड़ा,
आप भागती हुई जा रही थी, दूध को उतारने, आपके पांव में इतना बड़ा लगा हुआ है कड़ा, वो लगा था उससे टूटा, मैंने नहीं तोड़ा था। तो फिर तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लगा है? एक बार मैया ने पूछा, माखन में हाथ डाल के चोरी कर रहा है। माने बोला क्या कर रहा है? बोला लाल लाल तुमने यहां कड़ा डाला, इससे बहुत हाथ को गर्मी लग रही है, इसलिए माखन में डाल के ठंडा कर रहा हूं। बोला फिर मुंह के ऊपर माखन कैसे लगाए? बोला यहां मक्खी बैठ गई थी, इसको लगाया था इसलिए बैठ गया। वो कोई भी ऐसी बात बना के मां को आनंद देने का प्रयास करता है। अभी अभी मां ने डांटना शुरू किया, और मां ने डांटना शुरू किया और कन्हैया वाकई डरने लगा है। योग माया ने ऐसा वातावरण बनाया कि मां के हाथ में छड़ी को देख के कन्हैया भयभीत होने लगा। और मां ने देखा ये तो मैं इसको सिर्फ डरा रही हूं कि दोबारा कभी गलती न करे, ऐसा उधम न मचाए घर में, लेकिन ये तो भयभीत हो रहा है। इसलिए मां ने किस चीज से भयभीत हो रहा है? लाठी से भयभीत हो रहा है। तो मां ने एकदम लाठी को फेंक दिया। जैसे देखा कि कन्हैया लाठी से डर रहा है, त्यक्त्वा यस्तिम सुतम भीतम, अपने बेटे को भयभीत देखकर, सुतम भीतम अपने बेटे को भयभीत देखा, त्यक्त्वा छोड़ दिया, यस्तिम जो हाथ में लाठी थी उसको फेंक दिया। बोला क्यों फेंक दिया? विज्ञान अर्भक वत्सला, क्योंकि बच्चों से बहुत प्रेम करती थी यशोदा, यशोदा को बच्चे से इतना प्रेम था, वो तो सिर्फ उसको, इसलिए कहते हैं माता पिता बच्चों को डराते नहीं, मारते नहीं है, डराते हैं, वो डराते इसलिए हैं कि गलत काम ना करें, लेकिन हृदय से उनका प्रेम होता है इसलिए ऐसे करते हैं। मां को इतना प्रेम था, अर्भक वत्सला, 80 साल की उम्र में मां को एक ही तो बेटा हुआ था, और उस बेटे को भय लगे लाठी के कारण लाठी को फेंक दिया। लाठी को तो फेंका, लेकिन मां ने मन में सोचा इसको अब छोड़ दूंगी तो ये भाग जाएगा, और इसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए क्या करूं, थोड़ी देर के लिए इसको बांध के रखती हूं, अभी जाके इसलिए नाश्ता बना लेती हूं इसके लिए, माखन निकल, वो तो मटका फोड़ दिया, अब दूसरा व्यवस्था करके दूध का और इसको भोजन करा लूं। और मां ने कहा ठीक है, अब तुम्हारे को क्या करूंगी, ईयेश कीलतम बद्धम दामता दाम नातद वीर्य कोविदा। मां ने कहा तुम्हें बांधूंगी, आज तुम्हें अपने साथियों के साथ खेलने जाने नहीं दूंगी, आज तुम अपने साथियों के साथ खेलने नहीं जा सकते, तुमको बांधूंगी। और सुखदेव गोस्वामी एक दिन कहते हैं यशोदा किसको बांधने जा रही है, उसको मालूम नहीं है कि ये साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा, वो तो इसका अंश है, ये तो साक्षात स्वयं परम पुरुष भगवान है, इसको बांधने जाती है, उसको ये भी पता नहीं है कि ये कौन है, कोविदा कौन है। एकदम दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसके न कुछ अंदर है न बाहर है, इसको कैसे कोई बांध सकता है? भाई बांधेगा जब बाहर से तुम्हारी रस्सी घूमेगी तो ना, तो ये सारा संसार इसके एक विराट शरीर के अंदर पड़ा है, और विराट शरीर तो इसका कुछ भी नहीं है, एकांशा एकांशे न स्थितो जगत, भगवत गीता में भगवान कहता ये तो मेरे एक अंश में ये सारा विराट सब जो रूप देख रहे हो, मैं तो इससे बहुत अलग हूं, उसको कैसे बांध सकेगी। मां ने निश्चय किया कि बच्चा डर रहा है इसलिए इसको बांध देती हूं, मां ने बांधने का प्रयास कल करेंगे, अभी आज भी खुला रहने दो कन्हैया को, कल मां कन्हैया को कैसे बांधेगी इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दामोदर कृष्ण की, राधा दामोदर की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गौर प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद की। कौन है आज बोला जल्दी, पब्लिक के बीच में बुलाना चाहिए ना जल्दी। अनाउंसमेंट